دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.
ہمارے اگلے معزز مخاطب ہوں گے آپ سے، میں آپ سب کی پرزور تالیوں میں بلانے جا رہا ہوں ڈاکٹر صابر ابو مریم کو، جو سیکرٹری جنرل فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر صابر ابو مریم.
میں یہ کوشش کروں گا کہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہی اپنا طالب علمانہ انداز ہی اپناؤں، اور کچھ باتیں اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے جو ہمارے طالب علم ہیں اس وقت مادر علمی میں، ان کے لیے پیش کروں آج کی اس سیمینار کے عنوان سے. یہ بات بڑی کلیئر ہے جس طرح ڈاکٹر شائستہ فرما رہی تھیں کہ دونوں طرف فورن آکوپیشن ہے. کشمیر کی بات کریں یا پیلسٹائن کی بات کریں تو دونوں جگہ ہمیں بڑی اسٹرانگ فورن آکوپیشن وہ نظر آتی ہے. اور یہ جو اسرائیل ہے، اب میں کچھ ایسی باتیں کروں گا آپ کے ساتھ جو آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کے لیے جاننا وہ بہت ضروری ہے، اور ممکن ہے کہ آپ بہت ساری باتیں جانتے ہوں گے لیکن آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہوں گے. اب کوشش یہ ہوگی کہ ان سوالوں کے جواب آپ کے پوچھنے سے پہلے کلیئر ہو جائیں، نہیں ہوتے تو پھر سوالات کا سیشن بھی بعد میں باقی ہے. میڈم کی گفتگو سے ہی ایک نقطہ جو میری سمجھ میں آیا ہے، جو لینڈ لا کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے یہاں پر اپنی گفتگو میں، جو بات کی ہے، ایک فلسطینیوں پر بلیم آیا تھا، بلیم کیا جاتا ہے کہ فلسطینین نیشن نے اپنی زمینیں بیچ دی. یہ بہت بات ہوتی ہے جب بھی آپ کبھی فلسطینین کاز کی بات کریں اور ان کے لیے کوئی سپورٹنگ کے لیے کھڑے ہوں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جناب یہ تو خود اپنی زمینیں بیچنے والے ہیں. میرا ایک طالب علمہ جواب یہ ہے طالب علم کی حیثیت سے کہ کیا کوئی اپنا وطن بیچ سکتا ہے؟ کیا ہمارے پاس یہ رائٹ ہے کہ ہم اپنا وطن بیچ دیں؟ اس کا جواب میڈم کی پریزنٹیشن کے اندر موجود تھا، جو انہوں نے لینڈ لا کی جو تفصیل پیش کی ہے آپ کے سامنے، کس طرح سے ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، کس طرح سے ان کے ساتھ خیانت کی گئی، اور کس طرح سے باہر سے لا کر لوگوں کو ایک پرومس لینڈ کا دھوکہ دے کر وہاں پر لا کر بسایا گیا. اب دوسری بات کی طرف میں آتا ہوں. کہا گیا کہ یہ حرز موعود ہے، پرومس لینڈ ہے، سارے جیوز نے یہ کلیم کیا کہ ہم یہاں پر آنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر اپنی ایک اسٹیٹ آف اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. یہاں پر یہ سوال ضرور اٹھنا چاہیے، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس ہیں سارے زیادہ تر، کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ان زائنسٹ نے یہ پلان کیا کہ اسٹیٹ آف اسرائیل پیلسٹائن کے اندر ہونی چاہیے. تو اسٹیٹ آف اسرائیل تو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو سکتی تھی، سوئٹزرلینڈ کے اندر ہو سکتی تھی میڈم، کہیں بھی ہو سکتی تھی، آسٹریا کے اندر ہو سکتی تھی، پورا یورپ خالی پڑا ہوا تھا اس زمانے میں، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان میں نئی نئی جو یورپین اسٹیٹس پیدا ہو رہی تھیں، تو وہاں پر تو کہیں بھی یہ بنایا جا سکتا تھا. تو یہ ہمیں سوالات یہ ایڈریس کرنے چاہیے، کیونکہ یہ وہ خطہ ہے فلسطینین لینڈ جو ہسٹوریکل ریلیجن کے اعتبار سے اور آج کل جو اکنامک انٹرسٹ ہے، جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ بن جاتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ وہ لینڈ ہے جو افریقہ کو، یورپ کو ایشیا کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے اس خطے میں اپنا پولیس مین بٹھانے کے لیے جن لوگوں نے کالونلائز کیا تھا، جس کا ذکر بھی میڈم کی پریزنٹیشن میں تھا، میں ساری باتیں وہیں سے تسلسل کر رہا ہوں کیونکہ آپ میری استاد ہیں اور آپ ہی کی گفتگو سے میں نے یہاں پر جو پوائنٹس نوٹ کیے ہیں اسی کو میں آگے کنٹینیو کر رہا ہوں، کہ جو کالونیل پاورز تھیں وہ ختم ہو رہی تھیں، اپنی طاقت کو چھوڑ رہی تھیں، ان کو خطے میں کچھ نہ کچھ تو چاہیے تھا. ویسٹ ایشیا کے اندر انہوں نے اسرائیل کو لا کر پولیس مین بنا دیا کہ آپ نے یہ ویسٹ ایشیا کو کنٹرول کرنا ہے، یہاں پر پورے ریجن کے اوپر آپ نے قبضہ کر کے بیٹھنا ہے. اور پھر آگے چل کر آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے یہ پڑھا ہوگا اپنی جو ہسٹری میں کہ 67 کی عرب اسرائیل وار، 73 کی وار، یہ ساری اسی لیے کی گئی کہ لبنان کو، سیریا کو، جارڈن کو، ایجپٹ کو، سینائی کو، اس کو آکوپائڈ کر لیا جائے. اور اسرائیل نے یہ کر کے دیا، انہوں نے گریٹر اسرائیل کی تھیوری لے کر آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ اسٹیٹ ہے کہ جس کی کوئی سرحد ہی ڈیفائن نہیں ہے، یہ گریٹر اسرائیل ہے، یہ جدھر بڑھتا چلا جائے گا اس کو بڑھاتے چلے جائیے. اب یہ کہاں رکے گا آ کر؟ کیا پاکستان تک رکے گا؟ کیا سعودی عرب تک رکے گا؟ اگر اس کے وہ میپس دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سعودی عرب کی بہت ساری زمینیں، حجاز مقدس جس کو کہا جاتا تھا، اس کی بہت ساری زمینیں اس کے نقشوں میں شامل ہیں. اسی طرح اور ساؤتھ ایشیا ریجن تک ان کی آنے کی بہت ساری پلاننگ ہمارے سامنے آتی ہے. تو انہوں نے یہ کیا، پریکٹیکلی کر کے یہ بتایا کہ ہم نے اسرائیل کیوں بنایا تھا. یہ وہ بات ہے जो हमारे सामने आती है कि बाहर से लाकर आपने दूसरों की ज़मीन पर कब्ज़ा किया और आप कहते थे कि ये आपके आबाओ अजदाद की ज़मीन है। तो मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है, जो मैंने जो मुताला किया है बहुत सारी किताबों के अंदर, और बहुत सारे पैलस्टीनियन जो स्कॉलर्स हैं, ख़ुद पैलस्टाइन में, लिबनान में उनसे मिला हूँ, मुख्तलिफ इंग्लैंड में जो पैलस्टाइन कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ उनके साथ ये डिस्कशन रही है, वो ये कहते हैं या जो शवाहिद सामने आते हैं बहुत सारी डिबेट्स के बाद, तो कई सौ साल बिफोर क्राइस्ट कहीं हमें कोई ऐसी स्टेट मिलती नहीं है। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इज़राइल बनाया था, तो ऐसी कोई तारीख आज तक हमें नहीं मिली मुस्तनद के जिसके अंदर हम कहें कि ऐसा हुआ था। वो इसलिए नहीं मिली स्टूडेंट्स के इस वक्त भी जब आज यानी हम और आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अमेरिका के अंदर एक ज्यूज की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। आप आज ही अगर आपके नेट चल रहे हों तो आप इसको सर्च कर लीजिए, नेटोरी कार्टा के नाम से एक ज्यूज की बहुत बड़ी एनजीओ है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये रबाई हैं सारे, ये सारे रिलीजन के फॉलोअर्स हैं, जिसको हम जैसे हमारे यहाँ उलमा होते हैं उनके यहाँ वो रबीज होते हैं, ये वो हैं सारे के सारे, और ये हंड्रेड एंड थाउजेंड्स हैं। ये एंटी इसराइल हैं, ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू तौरा, कोई ऐसी स्टेट का वादा हमारे साथ नहीं है कि जो फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की शक्ल में हो। ये बात वो कहते हैं कि ज़रूर है कि यहूदियों की एक ममलिकत होनी चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो फ़लस्तीन के अंदर इसराइल बनाया गया है इसकी कोई भी यहाँ पर कोई हैसियत या उसको वो तस्लीम नहीं करते। यानी उनका ये मानना है कि ये जो फ़लस्तीन में बनाई गई है ये गलत है। वो अपने यूनिफॉर्म पर, जो उनका रिलीजियस यूनिफॉर्म है, उस पर पैलेस्टीनियन फ्लैग लगाते हैं एक तरफ इजरायली फ्लैग लगाकर उस पर क्रॉस लगाते हैं, और ये ज्यूज़ ये मैसेज देते हैं कि इसराइल इज़ एन इलेजिटिमेट स्टेट। ये वो दूसरा जवाब है। तीसरी बात, अगर इनकी बात को मान लिया जाए और कहा जाए कि ठीक है आपकी प्रॉमिस लैंड है, आप आ जाइए यहाँ पर आइए, तो ये कहते हैं कि हमें कत्ल किया गया दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, यूरोप में और जगहों पर, स्पेन में, हत्ता वो रशिया में और इराक में भी। तो एक रिसर्च ये बताती है कि जहाँ पर भी इनके साथ हुआ कोई मुस्लिम्स नहीं थे वहाँ पर इनको कत्ल करने वाले। जर्मनी में जो कुछ हुआ अगर उसको मान लिया जाए, जिस तरह ये बयान करते हैं होलोकॉस्ट, हम उसको तस्लीम कर लेते हैं, हम कहते हैं ठीक है ये बड़ा जुल्म हुआ, क्योंकि हम ना ज्यूज़ के अगेंस्ट हैं ना हम क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट हैं, हम ये तस्लीम करते हैं ठीक है आपके साथ जुल्म हुआ, लेकिन क्या ये हक है, क्या ये जस्टिस है कि उस जुल्म का इंतकाम फ़लस्तीनियों से लिया जाए? क्या जो स्पेन के अंदर क्रिश्चियनिटी ने आपके साथ किया, क्या उस जुल्म का इंतकाम पैलेस्टीनियन नेशन देगी? जो कुछ वो रशिया के अंदर हुआ आपके साथ, क्या उसका बदला हमने देना है? या इराक के अंदर जो आपने मजहबी इबादतगाहों में धमाके किए, बिन गोरियन जो इस जो ज़ायनिस्ट इसराइल का पहला वज़ीर आज़म बना, उन्होंने अपनी कैनेसेट के अंदर पहली गुफ्तगू के अंदर ये बात की 1948 में, और इस पर उन्होंने फ़ख्र किया, उन्होंने कहा कि हमने इराक में धमाके करवाए, दहशतगर्दी करवाई और ज्यूज़ की माइग्रेशन करवाई ताकि ज्यूज़ को यहाँ ले आए। तो ये वो बातें हैं जो हमें बताती हैं कि ये जो इनके झूठे दावे हैं ख़ास तौर पर इस लैंड के लिए, इसके पर्पसेस कुछ और हैं। इनका मकसद इस खित्ते को कंट्रोल करना, खित्ते के अंदर एक्सपेंड होकर पूरे वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट डालना, उसका कंट्रोल हासिल करना, हेजमिनी हासिल करना, ये इनके वो मकासद थे जिसको इन्होंने हासिल करने के लिए। इसके अंदर आप देखिए कि ब्रिटिश जो थे, यूके इसका बहुत बड़ा प्लेयर था, यूनाइटेड स्टेट्स इसके अंदर प्लेयर था, फ्रांस इसके अंदर प्लेयर था, साइक्स पिको जो एग्रीमेंट था, उसके बाद बेलफोर डिक्लेरेशन का आना, बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद 29 नवंबर 1947 के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर यकसर इस फ़लस्तीन की तकसीम कर देना, ये इस बात को जाहिर करता था कि इन्होंने बहुत ही प्री प्लान्ड इस खित्ते के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की बात की। ये वो बुनियादी दो तीन सवाल हैं जो मैंने आपके तलबा और तालबात की खिदमत के लिए पेश किए हैं। ज़ाहिर है कि ये उस्तादा यहाँ मौजूद हैं, ये मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ये बात इनके लिए नहीं है। एक और बात जो हम बतौर पाकिस्तानी करना चाहते हैं आज के इस सेमिनार में, ताकि हमारी नेशन, हमारे यंगस्टर्स को ये पता हो, आप देखिए कि 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन आई, जो जिसमें ये कहा गया है कि फ़लस्तीन को तकसीम कर दिया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान सॉरी बरसगीर के अंदर तहरीक पाकिस्तान की जो जद्दोजहद चल रही है, हमारे फादर ऑफ द नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह 1920 में सबसे पहले फ़लस्तीन डे मनाते हैं बरसगीर के अंदर। क्यों मनाते हैं? वो इसलिए मनाते हैं, वो कहते हैं कि ये जो साजिश की जा रही है बेलफोर डिक्लेरेशन की आड़ में, ये बहुत ही संगीन साजिश है और फ़लस्तीन को तकसीम करने का ये मंसूबा बहुत ही भयानक मंसूबा है, हम इस पर खामोश नहीं रह सकते। ये हमारे कायद का विजन है। कायद ने सबसे पहले 1920 में आवाज़ उठाई और इसी तरह ग्रेजुअली कायद आज़म मोहम्मद अली जिना पाकिस्तान के क़याम तक मुसलसल हर मौके पर फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीनी आवाम के लिए बात करते रहे। उसातज़ा मौजूद हैं, इस बात की तायद करेंगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, जर्मनी एक तरफ था, यूके एक तरफ था, बाकी पावर एक तरफ थी, खिलाफत उस्मानिया उस वक्त हमारी मौजूद थी, शेख अब्दुल हमीद सानी से कहा गया कि आप हमारा साथ दीजिए, शेख ने कहा कि हम आपका साथ नहीं देंगे। उससे पहले 1898 में चंद साल कबल ही तकरीबन 16-17 साल पहले सहूनियों का एक वफ्त शेख अब्दुल हमीद के पास आ चुका था, वो फ़लस्तीन की तकसीम की बात वो कर चुके थे, शेख ने उनको रिजेक्ट कर दिया हुआ था। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ये खिलाफत की सपोर्ट चाहते थे, सपोर्ट नहीं मिली, रिज़ल्ट क्या निकला? ओटोमन अम्पायर को तोड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, उसके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी गई। इसी तरह मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन जो फ़लस्तीन में थे, उनको ब्रिटिश ने क्या किया? टेररिस्ट डिक्लेयर किया, जिस तरह आज करती हैं ये इंटरनेशनल पावर्स बहुत सारे लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर करती हैं, मुफ्ती आज़म को दहशतगर्द करार दिया। ये बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ, पाकिस्तान स्टडीज़ में, पाकिस्तान हिस्ट्री में इसको रिसर्च कर लीजिएगा, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जब चाहेंगे बैठकर डिबेट करने को तैयार हूँ। मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन को बरतानिया दहशतगर्द करार देता है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना कहते हैं बरसगीर में फ़लस्तीन फ़ंड कायम करो। फ़लस्तीन फ़ंड कायम करके जो रकम जमा होती है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना उस रकम को फ़लस्तीनियों की मदद के लिए मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन को भेजते हैं। ये है कायद आज़म का विजन। कायद आज़म ने उस ज़माने में इस्तेमार की उन बातों को रिजेक्ट कर दिया जो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ थीं, जो हक़ के ख़िलाफ़ थीं, जो जस्टिस के ख़िलाफ़ थीं। तो यहाँ पर एक बात हमें समझ आती है, और इससे पहले मैं ये बात करूँ, मैं ये कहता चलूँ कि एक और हिस्टोरिकल जो फैक्ट है, 23 मार्च 1940 जब करारदाद लाहौर, जिसको करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, एक करारदाद नहीं आई उस दिन, उस दिन करारदाद पाकिस्तान के साथ करारदाद फ़लस्तीन पेश की गई। ये बताती है कि हमारा जो रिश्ता है, जिसकी वजह से आज हम और आप यहाँ सब बैठे हैं, ये इसलिए रिश्ता है कि हमारे आबाव अजदाद ने, हमारे फादर ऑफ़ द नेशन ने हमें ये रास्ता दिखाया है कि जस्टिस के साथ रहना है, जुल्म के ख़िलाफ़ रहना है, मजलूमों के साथ रहना है, और यही हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपने पढ़े होंगे यकीनन, जो यहाँ हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं जो फॉरेन पॉलिसी पढ़ते होंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते होंगे, तो कायद का जो विजन है फरवरी 1948 में जब उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इंटरव्यू देते हुए बात की, तो दो बातें निकल कर सामने आईं कि मजलूम की हिमायत करेंगे कहीं पर भी हो, और जालिम के ख़िलाफ़ हम रहेंगे, उस पर हम खामोश नहीं। और उससे पहले आप देखिए कि 47 में कश्मीर का इशू आ चुका था इस गुफ्तगू से पहले, और फिर मई 48 में इसराइल को बना दिया गया। तो हम ये कहते हैं कि जो ये कायद का विजन है, हम उसके फॉलोअर्स हैं। और इस वक्त जो मैं आखिरी बात की तरफ जा रहा हूँ, बहुत सारी मैंने हिस्टोरिकल और वो सारी चीज़ें छोड़ दी हैं जो इसकी जियो पोलिटिकल जो बात है इस वक्त, जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। इन्होंने पूरे खित्ते के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए बहुत सारी जंगें की हैं। 1967 की वॉर में, मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट्स के ग्रुप कैप्टन सैफुल आज़म पाकिस्तान एयरफोर्स, उस वक्त जनरल अयूब खान रूल कर रहे थे, उन्होंने ग्रुप कैप्टन सैफुल आज़म को भेजा जब 67 की अरब इसराइल वॉर हुई, तो 4 इजरायली तैयारे जॉर्डन की तरफ से लड़ते हुए हमारे पायलट्स ने मार गिराए। ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जो हमारा 1920 से चला है, स्टिल आज तक है, जिसकी वजह से हम और आप आज फ़लस्तीन और कश्मीर की बात करते हैं। सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकी, 1973 में जब इसराइल के साथ दोबारा जब अरब इसराइल वॉर हुई, तो ग्रुप कैप्टन सत्तार सीरिया की तरफ से जाकर उस वक्त के जो हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उन्होंने उनको भेजा और हाफिज़ुल असद को कहा सीरिया के, कि अगर आपकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत पड़ी तो मैं पूरी आर्मर्ड ब्रिगेड भेजूंगा। यहाँ पर ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं, वो इसको ज़्यादा अच्छा समझा देंगे बाद में आपको कि आर्मर्ड ब्रिगेड क्या होती है। तो ये बहुत ही बड़े हिस्टोरिकल हमारा जो है वो रिलेशन जाहिर करता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है इसका ये बताता है कि पैलेस्टीनियन कॉज के साथ और इसी तरह कश्मीर कॉज के साथ है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता था कि आज आप स्टूडेंट्स तक कम से कम ये जाएं। और एक और ख़ास बात जो इसी तनाजुर में है, जो आज की दुनिया की बात है, एक तरफ वो जंगे लड़े, दूसरी तरफ उन्होंने खित्ते के अंदर जो ऑक्यूपेशन की अपनी पॉलिसी जो अपनाई, लेबनान पर 78 में उन्होंने फौजें उतारी जो 2000 तक वहीं पर ऑक्यूपाइड रहीं, बाद में वहाँ से रेजिस्टेंस के नतीजे में निकली। मैडम ने रेजिस्टेंस की बात की थी, बिल्कुल रेजिस्टेंस कंटिन्यू है, फ़लस्तीन के अंदर है, लेबनान के अंदर है, और ये एंटी इसराइल रेजिस्टेंस है। ये हमारे फ़लस्तीनी वो निहत्ते लोग हैं जो पहले पत्थरों से लड़ते थे, गुलेलों से लड़ते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास भी बहुत ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं तो लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी ज़रूर है कि वो अपनी मदद आपके तहत अपना डिफेंस करते हैं। और ये डिफेंस करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप यूनाइटेड नेशन का चार्टर उठाकर देखें तो यूनाइटेड नेशन भी उन नेशंस को ये अलाउ करता है कि जिनको आपने ऑक्यूपाइड कर लिया हो, जिन पर आपने जिनको ऑप्रेस्ड बना दिया हो, उनका ये लेजिटिमेट राइट है कि वो अपने डिफेंस के लिए, अपनी नामूस की इज्जत के लिए क्या करें, वो रेजिस्टेंस करें और खड़े हो जाएं। तो लिहाजा इस रेजिस्टेंस की बहुत अहमियत है जो इसराइल के ख़िलाफ़ इस वक्त हो रही है, और हमारा ये काम है कि हम कायद के विजन पर रहते हुए इसको सपोर्ट करें। अब जंगों से जो रिज़ल्ट हासिल नहीं हुआ, जो कॉन्स्पायरेसीज से, प्रॉक्सीज से जो रिज़ल्ट उनको हासिल नहीं हुआ, मैं ये आखिरी बात कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस वो क्या है, इस वक्त एक नई थ्योरी हमारे सामने आई है, अब्राहमिक अकॉर्ड। ये हमें पता होना चाहिए कि अब्राहमिक अकॉर्ड क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये आज की नई टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आप स्टूडेंट्स को ये लाजमन पता होनी चाहिए। अब्राहमिक अकॉर्ड में हमें ये सबक पढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि ज्यूज़, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स दे ऑल आर कज़न्स, एंड ये सारे के सारे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्योंकि मुनसलिक हैं, उन्हीं की औलादों में से हैं, ये उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, ये सारे आपस में कज़न्स हैं। हमें एंटी सेमिटिज़म का दर्स दिया जा रहा है, हम तो किसी ज्यूज़ के ख़िलाफ़ नहीं हैं, उस्तादा यहाँ पर बैठे हुए हैं, कभी आपने नहीं सुना होगा कि कभी बतौर मुसलमान, बतौर इस्लाम, कहीं पर किसी इस्लामिक थॉट्स ने यहूदियत की मुखालफत की हो, कभी ईसाइत की मुखालफत की हो। हाँ, ये जो पॉलिटिकल जो इशू है, जो दूसरों की ज़मीन पर आकर आप इसराइल बना देते हैं, ये पॉलिटिकल इशू है, ये इनजस्टिस है। जब हम इसराइल के ख़िलाफ़ बात करेंगे, जब हम ये बात करेंगे कि भाई आपने ये गलत काम किया है, तो वो आपको कहेंगे आप एंटी सेमिटिज़म में आ रहे हैं, आप यहूदियत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो फिर जैसा मैंने कहा कि अमरीका में बैठे हुए हज़ारों यहूदी एंटी इसराइल हैं, तो क्या उनको भी एंटी सेमिटिक कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो तो ख़ुद यहूदी हैं। लिहाजा हमें इन टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर एक बहुत ही सोच समझ कर, दकीक अंदाज में हमें इनका पता होना चाहिए। और इस वक्त एक बड़ी साजिश है कि पाकिस्तान को ये कहते हैं कि इसराइल के साथ इसको रिलेशन बना लेने चाहिए। मेरी आखिरी बात है, इस पर डिबेट हो सकती है, इंटेलेक्चुअल बातें हो सकती हैं इस पर, ये बहुत अच्छी बातें हैं करने के लिए। हमें कहा गया कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, इसराइल के पास एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, वो हमारी एग्रीकल्चर को बूस्ट कर देगा। अब सवाल यहाँ पर मैं ये रेस करता हूँ, बाकी सोचना आपका काम है, कि मुझे बताइए 1978 में इजिप्ट का नाम लेते ही, जिसकी हमें हिस्ट्री याद आ जाए हज़ारों साल पुरानी, और हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम याद आ जाए, फिरौन याद आ जाए, वो इजिप्ट जब 1978 में इसराइल के साथ नॉर्मलाइज हो जाता है कैम्प डेविड में, उसने ताल्लुकात बना लिए, तो अभी गूगल कर लीजिए और मुझे बताइए कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ऊपर है या इजिप्ट की ऊपर है। तो 1978 से अब तक इसराइल के साथ है, तो कम से कम इसराइल उसको नंबर टू तो ले आता, नंबर वन खुद था तो ठीक है, अभी तक नहीं ला सका। इसी तरह और बहुत सारे हैं जिन्होंने नॉर्मलाइज किया है, लेकिन कोई उनको फ़ायदा इस वक्त हासिल नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी हमारे सामने है, उस आइडियोलॉजी को अगर हम छोड़ दें, जो जिन्हा की आइडियोलॉजी है, जिसकी फाउंडेशन पर पाकिस्तान खड़ा है और आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पीस से ज़्यादा जस्टिस की बात करनी चाहिए। पीस तब होगा जब आप जस्टिस करेंगे, जस्टिस नहीं होगा तो पीस ना कश्मीर में होगा ना पैलेस्टाइन के अंदर होगा। अगर चलें आखिरी बात, फ़लस्तीन को ठीक है इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम कर ले, एग्रीकल्चर ग्रोथ भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, तो 76 एयर से जो कश्मीर में हमारे लोग अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का टॉप ऑफ द लिस्ट हमारा इशू है, हम इसको कहां पर करेंगे? ठीक है, तो कश्मीर का सवाल ख़त्म हो जाएगा, तो हमें कश्मीर के सवाल को भी ख़त्म नहीं होने देना और हमें फ़लस्तीन के सवाल को भी ख़त्म नहीं होने देना। फ़लस्तीन के मसले का कहा जाता है कि सोल्यूशन क्या है, मैं ये सोल्यूशन पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। सोल्यूशन हो सकता है और बहुत ही इस पर अगर सारे लोग अगर मुत्तफिक होकर इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर सीरियस हो तो ये यकीनन हो सकता है, और ये 98 से तकरीबन 2001 के दरमियान कई मरतबा यूनाइटेड नेशन में पुट हुआ है कि पैलेस्टीनियंस को राइट ऑफ रिटर्न दिया जाए, कि वो अपने वतन वापस आए, एक रेफरेंडम के जरिए राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के जरिए वो अपना फैसला करें। अगर वो पैलेस्टीनियन ये फैसला करें कि बाद में आने वाले इन ज़ायनिस्ट को यहाँ रहने दिया जाए तो वो रहें। आपको ये पता होना चाहिए कि 1948 का पैलेस्टाइन, वहाँ पर ज्यूज रहते थे, वहाँ पर मुस्लिम्स रहते थे, क्रिश्चियंस रहते थे और छोटी मोटी और अकवाम रहती थी। ये सारे के सारे 1948 तक पैलेस्टीनियन ये अरब कहलाते थे और आज भी पैलेस्टीनियन अरब्स हैं। तो लिहाजा हम भी यही सोल्यूशन पेश करते हैं दुनिया के सामने कि एक ऐसा पीसफुल जस्टिस बेस्ड सोल्यूशन। हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि इन यहूदियों को समंदर में फेंक दिया जाए, इनको कत्ल कर दिया जाए, नहीं। लेकिन अगर आप हमें कत्ल करेंगे, आप हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करेंगे, हमारी लैंड्स को ऑक्यूपाइड करेंगे, हमारे रिलीजन को ऑक्यूपाइड करेंगे, तो डिफेंस तो हमारा राइट है, ये तो ह्यूमन राइट्स हमें इजाज़त देता है कि आप अपना डिफेंस कीजिए, सेल्फ डिफेंस कीजिए, तो हम करेंगे। लिहाजा यही वो सोल्यूशन है जिसको हम आज के इस सेमिनार में भी इस पर डिबेट करेंगे, और मेरा ख्याल है डॉक्टर खालिदा गौस साहिबा इस पर बड़ी तफसीली आपके सामने प्रेजेंटेशन भी पेश करेंगी कि राइट ऑफ रिटर्न देन रेफरेंडम, और ये उनका राइट है कि वो फैसला करें कि बाद में आने वाले रहते हैं या नहीं रहते और क्या करते हैं, तो ये वो फैसला करें। और यही हम डिमांड कश्मीर के मामले पर करते हैं कि कश्मीरियों को डिसाइड करने दिया जाए कि वो क्या चाहते हैं, आज़ादाना तरीके से, जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है 19, मेरे ख्याल है बशीर भाई यहाँ पर मौजूद हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 1949 में जो अक्टूबर में थी जो रेजोल्यूशन जिसमें ये कहा गया था कि कश्मीरियों को ये हक दिया जाए कि वो आया इंडिया के साथ जाते हैं या पाकिस्तान के साथ जाते हैं या वो कोई और चीज़ करना चाहते हैं, तो ये हमें उसके लिए उनकी फुल सपोर्ट करनी चाहिए। और हमें यकीन है कि हमारे कश्मीरी भाई किसी सूरत इंडिया के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने वहाँ पर जो जुल्म और बर्बरियत की है उसकी मिसालें हमें तारीख में नहीं मिलती हैं। तो लिहाजा हमें उनको भी स्ट्रेंथन करना होगा और अपने पैलेस्टीनियन कॉज को भी अपनी पाकिस्तानी आइडियोलॉजी के साथ उसको स्ट्रेंथन करना होगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक मरतबा फिर प्रोफेसर डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम साहिबा को आज के इस खूबसूरत और शानदार सेमिनार पर और इनकी काविशों पर और इनकी जो खुलूस और वो लगन है और इनकी जो शफकत है ख़ास तौर पर हमारे साथ स्टूडेंट्स के साथ, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे कि मैडम के लिए आप भरपूर तालियों से उनका शुक्रिया अदा करें।